ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातं अहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणे परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महाविदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरक्षे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। इष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्टिकी। ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्ये स्वे वेदे संग पद क्रम उपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुसुरसुरगणा देवायः तस्मै नमः देवायः तस्मै नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदायो नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओके सो वंस अगेन वेलकम एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन संडे मॉर्निंग। नो फॉर सम पीपल इट मे बी रियली चैलेंजिंग एंड चैलेंजिंग फॉर अटेंडिंग टू प्रोग्राम्स इन अ रो सैटरडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग। But thank you for being here. And we already had three sessions of Srimad Bhagavatam. If somebody has not heard the first three sessions, I will recommend please hear those first three sessions. So how many of you have not attended the first three sessions? But you have, how many of you have at least heard? Okay. And everybody understand Hindi? So, main soch raha tha Hindi mein Bhagavatam session karenge aaj. So, Bhagavat katha सुनने के लिए सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वी नीड टू हैव द पायस क्रेडिट. पहले पुण्य होना चाहिए, दैट उतना पुण्य होना चाहिए कि हम भागवत कथा सुन सके. अगर किसी के पास पुण्य संचित पुण्य नहीं है तो भागवत कथा में नहीं आ सकते. सो इफ यू आर हियर, जो भी आप लोग यहां पर हैं, इसका मतलब आपके पास उतना पुण्य है अकाउंट में कि भागवत कथा सुन सके. नहीं तो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी के पास जेब में सिर्फ 5 रुपया है और उसको ताज होटल में जाना हो तो क्या वो ताज होटल में जाके 5 रुपये में क्या कर सकेगा? अगर चला भी गया तो ताज होटल में चाय का कप भी 500 रुपये का है. So, 5 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा. सो अगर चला भी गया तो ताज होटल में टिक नहीं पाएगा. तो उसी तरह अगर जब तक हमारे पास पुण्य संचित नहीं है तो हम भागवत कथा में नहीं आ सकते और भागवत कथा श्रवण नहीं कर सकते. और अगर किसी तरह से भागवत कथा में आ भी गए तो हम भागवत कथा में टिक के बैठ नहीं पाएंगे. सो यू शुड बी ऑल हैप्पी, ग्लैड, कॉन्ग्रेचुलेट यूर सेल्फ इफ यू आर हेयर, मीन्स यू हैव द क्वालिफिकेशन टू हेयर भागवत. और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है भागवत सुनने का वो है हमारा इच्छा, डिजायर. तो सबसे पहले भागवत सुनने के लिए और भागवत समझने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है. तो हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था व्हाट इज द डिफरेंस इन श्रद्धा एंड विश्वास. तो गोस्वामी तुलसीदास ऑल्सो वो अपने रामचरितमानस में लिखते हैं कि बंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिनो. मैं भवानी और शंकर को प्रणाम करता हूं जो श्रद्धा और विश्वास रूप हैं. तो अगर किसी के पास श्रद्धा नहीं है तो अगर सुनेंगे भी तो उसको समझ नहीं पाएंगे और उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा. और श्रद्धा हमारे ड्रेस पे डिपेंड नहीं करता, हमारी स्टेट पे डिपेंड नहीं करता. कोई गृहस्थ है उसके पास श्रद्धा ज्यादा हो सकता है और जो टेंपल में ब्रह्मचारी है हो सकता है उसके पास इतना श्रद्धा ना भी हो. तो जो गृहस्थ है वो अपनी श्रद्धा से जल्दी भगवान के पास जा सकता है और जो मंदिर में है, टेंपल प्रेसिडेंट भी हो सकता है, ब्रह्मचारी के रूप में मंदिर में सेवा कर सकता है. पर अगर श्रद्धा नहीं है तो उसको अनेकों अनेक जन्म लगेंगे भगवान को पाने में. तो भागवत सुनने के लिए होना चाहिए श्रद्धा, श्रद्धा भागवत के अंदर, श्रद्धा स्पीकर के अंदर, श्रद्धा प्रोसेस के अंदर. और भागवत का फल क्या है? अगर जब हम भागवत सुनते हैं तो भागवत का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, फल? तो भागवत में आने के लिए पुण्य चाहिए. तो पुण्य है, अगर हमने हमारा अपना पुण्य है या हमारे पेरेंट्स, हमारे पूर्वजों का किया हुआ कुछ पुण्य है जिसकी वजह से हम भागवत कथा में आ पाए, तो भागवत कथा में आने के लिए पुण्य चाहिए. और भागवत कथा सुनने का फल क्या है? भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना. तो अगर भागवत कथा सुनते हैं तो उसका रिजल्ट है कि भगवान के प्रति प्रेम पैदा होता है हृदय में. इस संसार में सब कुछ, हर किसी को प्रेम चाहिए. मां के गर्भ में जो बच्चा है उसको मां के प्रति प्रेम है और बच्चा जैसे ही जन्म लेता है मां उसका लालन पालन करती है, उसका ध्यान रखती है, तो बच्चे को मां के प्रति प्रेम है. बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चे को अपने पिता के प्रति प्रेम है क्योंकि पिता खिलौने लेके देगा, पिता बाहर घुमाने के लिए लेके जाएगा. तो बच्चे को अपने माता पिता के लिए प्रेम है और बच्चा जैसे थोड़ा और बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, फ्रेंड्स बनते हैं, तो बच्चे को अपने फ्रेंड्स के प्रति प्रेम है। थोड़ा और बड़ा होता है, कॉलेज में जाता है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सो ऑल दोज थिंग्स कम। सो द लव इन दिस वर्ल्ड इज प्लेस्ड इन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, शादी होती है, तो अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति प्रेम है। अभी शादी हुई है तो घर संसार चलाने के लिए कमाना भी पड़ेगा, तो अपने काम के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति, अपनी जॉब के प्रति अट्रैक्शन, अपने जॉब के प्रति प्रेम है, अपने काम के प्रति। फिर घर बार के प्रति प्रेम है, कार के प्रति प्रेम है। तो संसार में शुरू से लेके एंड तक कहीं ना कहीं हम अपना प्रेम प्रकट करते हैं, अपना प्रेम। वी ट्राई टू लव समथिंग और समबडी, बट ऑल दैट लव, जितना भी वो सब प्रेम है, वो क्या है? बाहरी दिखावा, बाहरी और टेम्परेरी। इज देयर अ परमानेंट लव समवेयर इन द वर्ल्ड? एंड ऑल दैट लव एक्चुअली एंड्स अप इन फ्रस्ट्रेशन। बट व्हेन वी हियर भागवत, द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज द सुप्रीम लॉर्ड। अनलेस ऑल अवर अदर एक्टिविटीज डज नॉट डिवेलप अवर लव फॉर कृष्णा, ऑल दोज आर यूजलेस एंडेवर। सो दैट विल कम इन भागवतम फर्दर। सो भागवत में बताते हैं कि अगर जब तक हमारा व्यवसाय, हमारे सब एक्टिविटीज भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति आकर्षण पैदा ना करें, तो वो सब व्यर्थ का काम है। श्रम एव ही केवलम। तो भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करना, प्रेम पैदा करना, वो भागवत का फल है। और यहां पर सब जो बैठे हैं, अगर सोचे कि अगर भागवत सुनने से भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा, तो क्या सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे? माता जी को टेंशन हो सकती है, हमारे पति सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। एक्चुअली भगवान के प्रति प्रेम किसी भी स्थिति, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी को सन्यासी बनना पड़ेगा या ब्रह्मचारी बनना पड़ेगा भगवान के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिए। गृहस्था के अंदर, जैसे पहले बोला, ब्रह्मचारी और सन्यासी से ज्यादा प्रेम हो सकता है भगवान के लिए। यह हमारी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। और अगर भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो, अगर किसी के हृदय में भगवान के प्रति आकर्षण है, तो वो सबको प्रेम करेगा, सबके साथ उसका व्यवहार अच्छा होगा। तो श्रद्धा इज नॉट अ मैटर ऑफ अवर एक्सटर्नल ड्रेस। इट्स नॉट दैट somebody वेयरिंग धोती कुर्ता हैविंग तिलक हैज मोर श्रद्धा towards द लॉर्ड, और somebody हैविंग अ पेंट कोट डज नॉट हैव एनी श्रद्धा और एनी फेथ इन द लॉर्ड। जैसे एक बहुत अच्छा स्टोरी आता है श्रद्धा के बारे में। एक बार नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे इस धरती पे, तो भ्रमण करते करते वो एक मोची, कोबलर, जूते बनाने वाला जो होता है, तो एक मोची के पास आए। तो मोची अपना काम कर रहा था, जूते बनाते बनाते भगवान का भजन गा रहा था। तो जब नारद मुनि उसके पास आए, नारद मुनि को प्रणाम किया, नारद मुनि को बोला, नारद मुनि ने उससे पूछा कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, तुम्हारे कुछ भगवान के प्रति, भगवान से कुछ पूछना चाहते हो? तो जो मोची था, उन्होंने नारद मुनि को बोला, आप अगर भगवान के पास जा रहे हैं तो मेरा प्रणाम करना भगवान को, और भगवान से पूछना मुझे अभी कितना टाइम लगेगा भगवान के पास वापस आने में। तो नारद मुनि ने बोला, ठीक है, मैं पूछूंगा। और एक्चुअली जो ये कथा हम बताते हैं, जो स्टोरी कॉबलर का बताते हैं, ही इज अ वेरी ग्रेट सेंट, ही इज संत रायदास। एक बहुत महान संत हुए संत रायदास, जो जन्म से मोची के घर पैदा हुए, कॉबलर के घर, जूते बनाने वाले के घर। पर उनका भगवान के प्रति इतनी आसक्ति थी कि वो कुछ करना नहीं चाहते थे। पर पिता ने जब विवाह कर दिया, तो उनको अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए उनको लगा कुछ करना पड़ेगा, तो वो जूते ठीक करने का काम करते थे, पर उनका पूरा ध्यान भगवान में लगा हुआ था। और ये संत आगे चल के मीराबाई के गुरु हुए। सबको मीराबाई का तो पता है। सो ही वॉज द गुरु ऑफ मीराबाई, संत रायदास। तो नारद मुनि ने, तो उन्होंने पूछा भगवान से, पूछना मुझे कितना समय लगेगा अभी भगवान के पास वापस आने में। और उसके बाद नारद मुनि आगे गए, एक मंदिर आया, मंदिर में ब्राह्मण जो पुजारी था मंदिर का, तो वो पूजा करके बाहर आ रहा था, नारद मुनि उसको ही मिले। तो नारद मुनि को देख के उसने बोला, अब भगवान के पास जा रहे हैं, वैकुंठा भ्रमण करते हैं, आप तो भगवान को पूछिए मुझे कितना समय लगेगा भगवान के पास जाने में, हो सकता है मैं होपफुली आई विल बी एबल टू गो बैक दिस लाइफ टाइम, आई एम ऑलवेज एसोसिएटिंग विद द लॉर्ड, मैं तो पूरा दिन भगवान की पूजा अर्चना करता हूँ, भगवान के साथ ही मंदिर में रहता हूँ, तो मैं तो उम्मीद है कि इस जन्म के अंत में भगवान को मिल ही जाऊंगा, भगवान के पास चला ही जाऊंगा। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है मैं पूछूंगा भगवान से। तो नारद मुनि भगवान के पास गए वैकुंठ लोक, भगवान को दोनों भक्तों के बारे में बताया कि एक ऐसे मोची हैं जो हम हमेशा आपका भजन करते हैं और अपना काम करते हैं। तो भगवान ने बोला वो इस जन्म के अंत में वो मेरे पास वैकुंठा में आ जाएंगे। तो नारद मुनि वाज सरप्राइज, ओ रियली ही विल बी एबल टू कम बैक दिस लाइफ टाइम, और व्हाट एंड व्हाट अबाउट दैट ब्राह्मण, उन ब्राह्मण जो पुजारी हैं उनके बारे में क्या। तो भगवान ने बोला उनको बोलिए उनको अभी 10-20,000 जन्म लगेंगे मेरे पास वापस आने में। तो नारद मुनि वाज कंफ्यूज, तो नारद मुनि को लगा एक पुजारी है जो मंदिर में सेवा कर रहा है, भगवान की अर्चना पूजा कर रहा है, तो उसको भगवान बोल रहे हैं अभी बहुत समय लगेगा वापस आने में, और एक ये मोची है सड़क के किनारे पर बैठ के जूते ठीक कर रहा है, और उसको भगवान बोल रहे हैं इस जन्म में मेरे पास आ जाएगा। तो भगवान नारद मुनि की व्यथा को समझ के बोले कि अगर वो पूछे कि भगवान क्या कर रहे थे जब आप भगवान से मिले, तो उनको बोले भगवान सुई के छेद में से हाथी को पिरो रहे थे। समझे आप, सुई के छेद में से धागा पिरोते हैं, आपको धागा इतनी बार इधर उधर जाता है तो एक धागा पिरोना बहुत मुश्किल होता है। तो भगवान ने बोला उनको बोलिए भगवान सुई के छेद में से हाथी को पिरो रहे थे। तो नारद मुनि जब वापस आए 2-4 महीनों बाद धरती पे भ्रमण करते हुए, तो ब्राह्मण को मिले पहले, तो ब्राह्मण ने प्रणाम किया आगे, आप आगे भगवान को मिलके। तो भगवान ने क्या बोला, मैं इस जन्म में पहुंच जाऊंगा भगवान के पास। तो नारद मुनि बोला नहीं, खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपको अभी बहुत जन्म लगेंगे भगवान के पास जाने में। वो ब्राह्मण बड़ा गुस्से हो गया, बोला आप सचमुच के नारद हैं या ऐसी ड्रामा कंपनी से ड्रेस पहन के घूम रहे हैं इधर उधर, अच्छा आप ये बताओ भगवान कर क्या रहे थे जब आप भगवान को मिले, तो अभी पता चल जाएगा आप सच बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। तो नारद मुनि ने बोला भगवान जब मैं मिला उनको तो भगवान सुई के छेद में से हाथी को पिरो रहे थे। तो बोला अच्छा ये पता चल गया आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ये कोई हो सकता है भगवान कि सुई के छेद में से कोई हाथी को पिरो दे। तो नारद मुनि समझ गए भगवान ने क्यों बोला कि उसको अभी बहुत समय लगेगा, भगवान की सेवा कर रहा है पर उसको भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है, भगवान के अंदर श्रद्धा ही नहीं है कि भगवान की कैपेसिटी पावर क्या है। तो नारद मुनि वहां से आगे गए मोची को मिले, तो मोची ने दंडवत किया और पूछा कि आप भगवान को मिले, तो भगवान ने क्या बोला। तो नारद मुनि बोले भगवान ने बोला कि आप इसी जन्म के अंत में भगवान के पास पहुंच जाओगे वैकुंठा में। तो भक्त बड़ा खुश हुआ, प्रणाम करने लगा भगवान को, और फिर नारद मुनि ने बोला पता भगवान क्या कर रहे थे उस समय पर। तो नारद मुनि जी उनको बोले कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को पिरो रहे थे। तो रायदास जी खुश हो गए, अरे वाह भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हाथी को क्या, भगवान तो ब्रह्मांड को सुई के छेद में से पिरो सकते हैं। तो नारद मुनि बोला अच्छा तुम्हें विश्वास है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो उसने बोला क्यों नहीं कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान है, भगवान एक अगर छोटे से सीड में छोटे से बीज में ये पूरा वट वृक्ष पैक करके भेज सकते हैं, तो भगवान के लिए क्या बड़ी बात है कि सुई के छेद में से हाथी को निकाल दें, वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को सुई के छेद में से निकाल सकते हैं। तो नारद मुनि को समझ में आया कि ये एक्सटर्नल नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, किस ऑक्यूपेशन में है, या उसका एक्सटर्नल सिचुएशन क्या है, इट्स ऑल अवर लेवल ऑफ फेथ, कि हमें भगवान के अंदर कितना विश्वास है, भगवान के ऊपर हमारी कितनी श्रद्धा है। सो कथा सुनना है अगर भगवान का तो श्रद्धा होना चाहिए कथा में, तभी कथा का फल मिलेगा। और जब भागवत सुनते हैं तो पहले भागवत का महत्व हमें समझना चाहिए। तो मैं एक थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं एज अ कंडेंस समरी ऑफ द प्रीवियस 3 सेशंस, बट द कंटेंट मे बी कंप्लीटली डिफरेंट व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो भागवत को समझना है तो पहले भागवत की महिमा को समझना चाहिए कि भागवत की महिमा क्या है। और भागवत की सबसे बड़ी महिमा क्या है कि भागवत की महिमा भागवत के अंदर नहीं लिखी गई है। तो भागवत में भागवत की खुद की महिमा नहीं आती, भागवत की महिमा लिखी गई है स्कंद पुराण और पद्म पुराण में। तो वेद व्यास जी ने जब भागवत लिखा तो भागवत की महिमा उन्होंने स्कंद पुराण और पद्म पुराण के अंदर लिखी। क्योंकि अगर कोई अपनी खुद की महिमा बोले तो एक बहुत बड़ा दोष हो जाता है वो। तो भागवत में वो दोष ना लगे तो उसकी महिमा भागवत में खुद में नहीं बताई गई है। तो कहते हैं कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल। तो जो व्यक्ति खुद बड़ा है तो वो अपने आप की खुद की बड़ाई नहीं करता, वो अपने बारे में खुद बड़े वचन नहीं बोलता। हीरा कभी ना बोले लाख टका मेरा मोल। तो जो हीरा होता है वो खुद से कभी नहीं बताता कि मेरा मोल है जो वो हजार लाख रुपए का है। बाकी सब चीजों का जैसे मोल होता है, फिक्स रेट होता है, गोल्ड उसका फिक्स रेट है, सिल्वर का फिक्स रेट है, पेट्रोल का फिक्स रेट है, जो हीरा होता है उसका फिक्स मूल्य नहीं होता। तो उसका हीरे का जो मूल्य होता है वो डिपेंड करता है उसको आंकने वाले के ऊपर कि उसका हीरे का कितना मोल लगाएगा। तो कोई हीरे को बोल सकता है ये 5,000 रुपए का है, ये 10,000 रुपए का है। और अगर लाख रुपए का भी हीरा है तो वो खुद नहीं बोलेगा अरे मेरा इतना कम मोल लगा रहे हो, मेरा एक्चुअल मोल तो लाख रुपए का है। तो जो महान होता है वो अपनी महानता खुद नहीं करता। अगर कोई अपनी महानता खुद बोलने लगे, खुद अपनी ग्लोरिफिकेशन करने लगे तो ये बहुत बड़ा दोष है। तो वी ऑल्सो शुड टेक अ लेसन एक्चुअली, वी शुड नॉट स्पीक अवर ओन प्रेज, अवर ओन ग्लोरिफिकेशन फ्रॉम अवर ओन माउथ। उसमें बोलते हैं कि अगर किसी को सुसाइड कमिट करना है तो उसको ट्रक के नीचे आने की जरूरत नहीं है, फंदा लगा के मरने की जरूरत नहीं है, पॉइजन खाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपनी खुद की बड़ाई कर ले तो मरा हुआ माना जाता है। तो भागवत का महात्म्य इसलिए भागवत में नहीं बताया गया। और भागवत का महात्म्य क्या है, तो जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि आपकी 7 दिन में मृत्यु होगी, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के गंगा किनारे पर आए, वहां पर ऋषियों मुनियों के प्रति समर्पण किया कि आप मुझे बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और स्पेशली जो मरने वाला है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या ड्यूटी है। और सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन पूरा भागवत उनको सुनाया, भागवत पुराण। और सुखदेव गोस्वामी को रिजल्ट में क्या मिला, मोक्ष प्राप्त हुआ। और जब ब्रह्मा जी को यह बात पता चली कि परीक्षित महाराज 7 दिन भागवत कथा सुना और उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, तो ब्रह्मा जी का सर चकरा गया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी चकरा गए कि यह कैसे हो सकता है। कोई हजारों हजार साल तपस्या करे, कोई पूरा ज्ञान अध्ययन करे, जप तप करे, तो भी उसको मुश्किल से मोक्ष प्राप्त होता है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन उन्होंने भागवत कथा सुना और उनको मोक्ष मिला, ये कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तुला मेजरिंग स्केल बनवाया, उसमें एक साइड पे एक पल्ले पे उन्होंने रखा भागवत कथा सुनने का फल और दूसरी तरफ रखा तप करने का फल। हजारों हजार साल कोई तप करे उसका फल एक पल्ले में और भागवत कथा सुनने का फल एक पल्ले में। तो भागवत कथा का फल भारी हो गया। अगर उन्होंने तप की जगह ज्ञान का फल रखा तो भी भागवत कथा सुनने का फल भारी हुआ। फिर उन्होंने कर्म का फल, जप का फल सब कुछ रखा तो भागवत कथा सुनने का फल हमेशा भारी। तो ब्रह्मा जी 4 सिर वाले, ब्रह्मा जी के सर चकरा गए। उन्होंने सब चीजों का फल एक साथ एक तराजू में एक तरफ रखा तराजू के, और भागवत कथा सुनने का फल एक तरफ, तब भी भागवत कथा सुनने का फल भारी। ब्रह्मा जी को यह यकीन नहीं हो पा रहा था कि भागवत कथा का महात्म्य इतना हो सकता है, भागवत कथा का फल इतना हो सकता, प्रभावशाली हो सकता है कि मोक्ष दिला सके, भगवान के प्रति प्रेम पैदा कर सके। तो ब्रह्मा जी ने तब एक रेजोल्यूशन पास किया कि अगर कोई पूरी श्रद्धा के साथ भागवत कथा सुनता है उसको भगवान की प्राप्ति होगी। तो ये ब्रह्मा जी का पास किया वो रेजोल्यूशन। और भागवत की महात्मा एक और आती है कि जब परीक्षित महाराज कथा सुनने के लिए बैठे, सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने लगे, तो जैसे ही वो कथा सुनाना परम करने ही जा रहे थे, शुरू करने ही जा रहे थे, तो सब देवी देवता वहां पर पहुंचे। नैमिषारण्य में सब देवी देवता वहां पर प्रकट हुए। इंद्र अपने हाथ में अमृत कलश लेके वहां पर प्रकट हुए और सुखदेव गोस्वामी जी को बोले कि आप परीक्षित मरने वाला है, उसको 7 दिन के बाद तक्षक आगे काटेगा और परीक्षित की मृत्यु होगी। आप ये अमृत लो, सुखदेव को उसको परीक्षित को ये अमृत पिला दो, वो अमर हो जाएगा। आप हमारे साथ स्वर्ग लोक चलो और हमें वहां पर ये भागवत कथा अमृत पिलाओ। परीक्षित को मृत्यु का भय है, उसको आप ये अमृत दो और भागवत कथा अमृत आप हमें प्रदान करो। स्वर्ग लोक में चलो हमारे साथ, वहां पर आराम से बैठ के हमें कथा सुनाओ। तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ा गुस्सा आया। अभी जर्नली क्या होता है, अगर समाज में अभी देखा जाए तो ये पद्धति बनी हुई है कि लोगों को लगता है किसी को बुलाएंगे, कुछ पैसा देंगे, उनसे भागवत कथा कराएंगे, इससे हमें पुण्य मिलेगा, इससे हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो कथा का व्यापार किया जाता है, उसको बोलते हैं कि आप इतने पैसे लो, हमें कथा सुनाओ। और एक्चुअली जो वक्ता है उनमें भी ये टेंडेंसी है कि कथा का मूल्य लेने की। अगर कोई बोले हम भागवत कथा करना चाहते हैं तो पहले मोल भाव होता है, अच्छा आप कितना पैसा दोगे कथा कराने का, हमारा रेट 5 लाख रुपया है। तो अगर कोई पैसा लेके कथा कर रहा है उसका कोई फल नहीं मिलेगा। और अगर किसी की टेंडेंसी है कि हम पैसा देके कथा कराएंगे, हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा, हमारा खुद का उद्धार होगा, उससे भी कथा का कोई फल नहीं मिलेगा। तो जो दोनों जो मेंटेलिटीज हैं, पैसा देके कथा करवाने की और पैसा लेके कथा करने की, ये बहुत ही गलत पद्धति है। तो कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो भागवत कथा है वो एक तरह से हमारा जीवन है। इस तपते हुए जीवन को आश्रय देने का साधन है। पर अगर उस भागवत कथा हमारा जीवन है तो उसको अगर कोई जीविका बनाता है तो भागवत के प्रति अपराध है और उसका सारा फल नष्ट होता है। तो जब सारे देवी देवता वहां पर पहुंचे, सुखदेव गोस्वामी को बोला आप अमृत लो और हमें कथा सुनाओ। अगर चुपचाप आगे बैठ गए होते तो कथा सुन सकते थे वहां पर बैठ के, पर देवी देवताओं की एक क्षमता नहीं है कि इतनी तपस्या कर सके, धरती पर आकर 7 दिन बैठ के ऐसे कथा सुन सके। उनको चाहिए थोड़ा आराम परस्ती कि आराम से बैठ के अपने सिंहासन पे कथा सुनेंगे मदरा पान करते हुए। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला अभी यहां से निकल जाओ, तुम कांच के टुकड़े लेके हीरा खरीदने आए हो। तो जो अमृत है, जो स्वर्ग का अमृत है, वो कांच के टुकड़े की तरह है और जो भागवत कथा अमृत है वो हीरे की तरह है। तो कांच के टुकड़े के सामने, हीरे के सामने कांच के टुकड़े का क्या भाव। इसलिए बोलते अगर किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि से क्या होता है, इस धरती के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। और अगर किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष से स्वर्ग के फल प्राप्त हो सकते हैं, स्वर्ग के सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। पर अगर किसी को भागवत कथा अमृत मिल जाए तो उसको वैकुंठ का फल प्राप्त हो सकता है, वो गोलोक वृंदावन भगवान के धाम में वापस जा सकता है। तो भागवत कथा का ये फल है। तो सुखदेव गोस्वामी बोला आप लोग अभी यहां से भाग जाओ नहीं तो मैं तुम लोगों को श्राप दे दूंगा अभी। तो सब देवी देवताओं को वहां से भागना पड़ा। तो यहां से जो व्यवसाय की पद्धति है कि मोल भाव करके भागवत को खरीदेंगे, भागवत सुनेंगे, वैसे तो उसका कुछ फल नहीं है। तो भागवत सुनना है तो उसके लिए श्रद्धा होनी चाहिए, भागवत को समझने के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, भागवत को सुनने में एकाग्र चित कंसंट्रेशन होनी चाहिए, अटेंटिवनेस। और कथा सुनने का, जैसे क्लास में एक टीचर सब स्टूडेंट्स को एक जैसा पढ़ा रहा है, तो टीचर इज टीचिंग एवरीबडी सेम थिंग बट ऑल द स्टूडेंट्स गेट डिफरेंट रिजल्ट। जितने भी स्टूडेंट है क्लास में उनको अलग अलग रिजल्ट आता है, कोई 90% मार्क्स लेगा, कोई 80% लेगा, कोई 70% लेगा, कोई फेल होगा, कोई आगे चल के डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई सीए बनेगा और मे बी कोई चोर बनेगा। तो जैसे एक क्लास में टीचर सबको इक्वली पढ़ा रहा है, पर स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से, स्टूडेंट के पढ़ने के हिसाब से कि कितना समझ रहा है कितना पढ़ रहा है अलग रिजल्ट है। वैसे ही भागवत कथा जब सुनते हैं कितना हम ध्यान से सुन रहे हैं अटेंटिवली, तो उससे हमें फल अलग अलग मिलता है। उसका हमने महात्मा अलग से सुना था गोकर्ण धुंधकारी कथा। तो भागवत का महात्म्य अगर हम समझ के भागवत कथा सुने, तो भागवत का महात्म्य बताने के बाद तो भागवत में हम पिछले और दो सेशन में हमने डिस्कस किया कि और जो सेजेस नेमेशरण्य के सेजेस सुत गोस्वामी को पूछते हैं कि हमारा अभी कलयुग में सब जीवों का जो बहुत बुरी स्थिति हो गई है, पाप इतना बढ़ गया है, तो उनका उद्धार कैसे होगा, आप उसके लिए जो शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है वो हमें बताएं। भूरिनी भूरी कर्मानी श्रोतव्यानी भिवागशा। सो इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें इतनी चीजें बताई गई हैं, पर स्क्रिप्चर्स का सार क्या है, सारे शास्त्रों का सार क्या है, जीव की अल्टीमेट ड्यूटी क्या है, तो आप हमें वो बताएं। और उन्होंने कलयुग की स्थिति का वर्णन किया कि कलयुग में क्या लक्षण है। जो मनुष्य है कलयुग में ऑलमोस्ट राक्षस की प्रवृत्ति का हो गया है। ऐसा नहीं है कि देखने में राक्षस जैसा है कि दो सींग निकल आए हैं या कोई भयंकर देखने में रूप है। सो दैट इज स्टीरियोटाइप। इट्स नॉट दैट somebody has a physical appearance like a demon. इट्स द इंटरनल टेंडेंसीज, जो नेचर है, जो हमारा अंदर का भाव है, वो राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है। जितने भी और स्पीसीज हैं वो अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं, पर जो मनुष्य है वो अपनी नेचर के ऑपोजिट काम कर रहा है। अभी जो चिड़िया है, चिड़िया दाना चुगेगी, जो गाय है वो घास ही खाएगी, जो शेर है वो मांस ही खाएगा। शेर को जितना मर्जी आप घास डाल दो मर जाएगा, वो घास नहीं खाएगा। गाय जो है सिर्फ घास ही खाएगी, गाय अपना दूध भी नहीं पीती है। गाय सबको दूध देती है पर गाय खुद दूध नहीं पीती है। और पक्षी जो हमेशा वो दाना ही चुगता है। तो सब अपनी अपनी नेचर के हिसाब से काम कर रहे हैं, पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कुछ भी उल्टा सीधा करेगा, वो ये भी खाएगा वो भी खाएगा सब कुछ खाएगा। तो जो मनुष्य है वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया है, तो मनुष्य का उद्धार कैसे होगा, उसको जो उसकी प्रवृत्ति इतनी बिगड़ गई है उसकी प्रवृत्ति सुधरेगी कैसे, उसका उद्धार कैसे होगा, तो उसके लिए बताया कि भागवत कथा। सुत गोस्वामी ने बोला कि मैं आपको भागवत कथा श्रवण कराऊंगा, आप भागवत कथा सुनिए जिससे सबका उद्धार होगा। और भागवत कथा करना ये नहीं है कि हम किसी के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। जैसे पहले बोला कि भागवत कथा को व्यवसाय के रूप में नहीं होना चाहिए, वैसे ही तुलसीदास जी जब रामायण कथा कर रहे थे, रामचरित मानस बोल रहे थे, उन्होंने बोला समंत सुखाय रघुनाथ तुलसी तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं जो रघुनाथ की गाथा गा रहा हूं वो अपने बेनिफिट के लिए गा रहा हूं। समंत सुखाय, फॉर माई ओन सेटिस्फेक्शन, फॉर माई ओन प्योरिफिकेशन, आई एम स्पीकिंग द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड राम, स्पीकिंग द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉर्ड राम। तो ये सबसे पहले खुद के परिवर्तन के लिए है, खुद के बेनिफिट के लिए है। भागवत कथा सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, तो तीन प्रकार के लोगों को बेनिफिट होता है। पहला जो स्पीकर है, वक्ता, दूसरा श्रोता, राइट, लिसनर्स, एक्चुअली सेकेंड इज who organizes. So one who speaks, he gets benefit. One who is organizing Bhagavad Katha, he gets benefit. And all the listeners get the benefit. And if somebody asks question, so they get benefit. So सबसे पहला जो खुद speaker है उसके benefit के लिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं बहुत अच्छा speaker हूं, मैं दूसरों के लिए, दूसरों को भक्त बनाने के लिए कथा कर रहा हूं। तो हमारी mentality होनी चाहिए मैं अपने लिए बोल रहा हूं, first it applies to me. If because I am the first listener, who is speaking, he is himself the first listener. So Suta Goswami जब उन्होंने भागवत कथा सुनाना शुरू किया तो ऋषि ने उनसे 6 प्रश्न किए थे. राइट, वी डिस्कस दैट इन द लास्ट टाइम. सो द सेजेस ऑफ नैमिषारण्य सौनक आदि ऋषि, उन्होंने 6 प्रश्न किए. पहला प्रश्न था, सब जीवों के लिए सबसे उत्तम क्या है? What is the topmost duty for everybody? सब शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न. तीसरा प्रश्न था, भगवान कृष्ण खुद देवकी के गर्भ में क्यों प्रकट हुए? और भगवान कृष्ण जब यहां पर थे उन्होंने क्या क्या लीलाएं की? पांचवा प्रश्न, भगवान किन किन रूपों में प्रकट होते हैं और अलग अलग रूप में जब प्रकट होते हैं, अलग अलग जब अवतार लेते हैं तो क्या क्या लीलाएं करते हैं? और छठा प्रश्न था कि जब भगवान अभी वापस चले गए हैं अपने स्वलोक स्वधाम वापस चले गए हैं तो उनके जाने के बाद धर्म ने किसके प्रति शरण लिया है? तो ये 6 प्रश्न पूछे. तो सूत गोस्वामी उनका आंसर देना शुरू करते हैं. So he briefly first answer all these 6 questions in the first 2 chapters, basically second and third chapter after the questions. So first question ke answer mein,
can I repeat the 6 questions? What is the 6 questions?
So pehla prashan tha, sab jeevon ke liye sabse uttam jo duty hai, sabse, what is the ultimate duty of every living entity? दूसरा प्रश्न था कि सब शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में खुद क्यों प्रकट हुए? व्हाई लॉर्ड कृष्णा पर्सनली मैनिफेस्टेड इन द वूम ऑफ देवकी? चौथा प्रश्न, भगवान कृष्ण जब धरती पर थे तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की? पांचवा प्रश्न, भगवान के अलग अलग अवतार क्या है और अलग अलग अवतारों में भगवान क्या क्या लीला करते हैं? और छठा प्रश्न, भगवान के जाने के बाद, भगवान के स्वधाम जाने के बाद धर्म ने किसके चरणों में शरण लिया है? वेयर द रिलीजन हैज टेकन शेल्टर नाउ. तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर में, फर्स्ट और सेकंड, जो पहला और दूसरे प्रश्न के उत्तर में, सुत गोस्वामी जी कहते हैं, सोवे पुंसा परो धर्मो यतोर्भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति. द सुप्रीम ऑक्यूपेशन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी इज दैट बाय विच मैन कैन अटेन टू द लविंग डिवोशनल सर्विस अनटू द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड एंड सच डिवोशनल सर्विस मस्ट बी अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड दैट ओनली सेटिस्फाई द सेल्फ. सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति. अहेतुकी अप्रतिहता, तो टू वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड्स. अहेतुकी मतलब जिसके पीछे कोई और हित नहीं है. अप्रतिहता मीन्स विच इज अनइंटरप्टेड, जिसके अंदर कोई रुकावट नहीं है. तो अगर कोई भगवान की भक्ति स्वीकार करता है, भगवान की भक्ति में लगता है, और भक्ति कैसी होनी चाहिए? जो जिसमें कोई रुकावट नहीं है कंटिन्यूअसली, और जिसके पीछे कोई और हित नहीं है, जिसका पर्पस सिर्फ भगवान की प्रसन्नता है. अगर भक्त, अगर जीव भगवान की भक्ति में लगता है, सिर्फ उससे ही जीव को परम सुख प्राप्त हो सकता है. तो पहला प्रश्न क्या था कि सब जीवों के लिए सबसे उत्तम क्या है? तो उसके आंसर में उन्होंने बोला सबसे उत्तम है भगवान की भक्ति. अभी जर्नली अगर हम भक्ति करने भी लगते हैं तो उसमें अहेतु की होती है. इज इट अनमोटिवेटेड और मोटिवेटेड? जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? पुत्र देही, काम देही, पुत्र दो, जॉब दो, घर दो, गाड़ी दो, बंगला दो. वी आर आस्किंग ऑल दीज थिंग्स, राइट? सो इज दैट मोटिवेटेड और अनमोटिवेटेड? इज दैट मोटिवेटेड और अनमोटिवेटेड? when we are asking from the Lord, it is motivated, right? और अगर आप भक्ति में लगते भी हैं, तो क्या होता है? एक दिन आए, एक दिन भक्ति किया, थोड़ा सा कुछ किया, भगवान की कुछ सेवा की, और फिर 6 महीने गायब। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में आए, थोड़ा आधा घंटा सेवा किया, और फिर उसके बाद अगली जन्माष्टमी तक गायब। तो क्या ये अनइंटरप्टेड है कि इंटरप्टेड भक्ति है? तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। अगर किसी की भक्ति मोटिवेटेड है तो क्या होगा? थोड़ी देर करेंगे, बाद में भाग जाएंगे। तो अगर भक्ति मोटिवेटेड है, अगर भक्ति हेतु की है, तो वो प्रतिहता होगी। जैसे ही डिजायर पूरा हुआ, ओके थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू लेटर, राइट? तो भक्ति जो होती है, हमें भक्ति में अगर लगना है तो कंटिन्यूअसली भक्ति में लगना है, दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ। और भक्ति मिलती कहां से है? भक्ति पैदा कैसे होती है? हर चीज किसी ना किसी चीज से तो पैदा होगी, राइट? संगात संजायते कामा, अगर किसी चीज का एसोसिएशन करते हैं तो डिजायर पैदा होती है उस चीज को पाने की। कामात क्रोधा भी जायते, अगर काम है तो फिर गुस्सा भी पैदा होगा, क्रोध भी पैदा होगा। तो किसी न किसी चीज से कोई चीज निकलती है। तो भक्ति कहां से निकलती है? भक्ति कहां से पैदा होती है?
सर्विंग लॉर्ड,
सर्विंग द लॉर्ड, ओके। भगवान की अगर सेवा करेंगे तो उससे भक्ति पैदा होगी। तो बट सर्विस जो है वो खुद ही भक्ति का लिंब है, दैट इज करेक्ट। अगर थोड़े सेवा करेंगे तो उससे भक्ति प्राप्त होगी। कई बार बोलते हैं भक्ति के लिए अगर भगवान की कृपा होगी, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी तब जाके भक्ति मिलेगी। तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा है सिर्फ उनको भक्ति मिलती है। तो क्या हम भगवान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो पार्शियल हैं, कि वो किसी किसी को भक्ति देते हैं और किसी को नहीं देते हैं? भगवान की कृपा तो सबके लिए समान है, तो उस हिसाब से सबको भक्ति में लगना चाहिए। भगवान की कृपा तो सबको उपलब्ध है। फिर कई बार हम बोल सकते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, जो ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज, ग्रेट डिवोटीज हैं, उनसे भक्ति मिलती है, वो भक्ति दे सकते हैं। तो पर भगवान के जो परम भक्त हैं वो भी इम्पार्शियल हैं, दे आर ऑल्सो रेडी टू डिलीवर एवरीबडी। तो फिर भक्ति कहां से आती है? कई बार हम सोचते हैं कि अगर भक्तों के संग में जाएंगे तब भक्ति मिलेगी, राइट? फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वी गेट भक्ति, बट एक्चुअली टू कम इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑल्सो इज पार्ट ऑफ भक्ति, दैट इज वन लिंब ऑफ भक्ति। तो भक्ति कहां से आती है? तो फर्स्ट इज श्रद्धा, राइट, लिटिल फेथ, एंड डूइंग लिटिल सर्विस, इवन दो somebody may have done some service unknowingly, अज्ञात सुकृति जिसको बोलते हैं। किसी ने अगर किसी की कहीं पर कुछ सेवा की, भक्तों की, भगवान के भक्तों की कहीं पर कुछ सेवा कर दी, तो उसको जो सुकृति मिली है उससे उसका भक्ति का अकाउंट स्टार्ट हो गया, उससे जाके फिर उसको भक्तों का संग मिलेगा। जैसे भक्त जाते हैं हरिनाम करने के लिए, हरिनाम करने के लिए बाहर जाते हैं, किसी ने भगवान का नाम सुना, और या जब भक्त जा रहे थे तो कुछ कोई हेल्प किया किसी का, किसी को कुछ सहायता की, अच्छा मैं आपका ये बैग उठा देता हूं, या किसी को जाते जाते प्रसाद मिला, प्रसाद बांट दिया किसी को, राइट? वी गो फॉर हरिनाम, वी डू सम प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, तो किसी को भगवान का प्रसाद खाने को मिला, या किसी ने भगवान के भक्तों की कुछ अनोइंगली भी थोड़ा हेल्प कर दिया, सहायता कर दिया, तो उससे भक्ति का उसका जो अकाउंट है वो स्टार्ट हुआ। सो अल्टीमेटली वी कैन से इट कम्स फ्रॉम सर्विस, बाय रेंडरिंग एनी लिटिल सर्विस भक्ति कम्स फ्रॉम देयर। सो भक्ति संजायते भक्ति, भक्ति भक्ति से ही पैदा होती है। कोई हमें फिजिकली ऐसे भक्ति निकाल के नहीं दे सकता, ओके मैं आपको भक्ति दे रहा हूं अभी आपसे, आज भक्त बन गए। तो भक्ति करने के लिए इच्छा होनी चाहिए, संचित कर्मा होना चाहिए, द Sukriti. And then bhakti can transfer if somebody has bhakti in the heart, from his impression the bhakti can come. So when we associate, when we start associating with the devotees, if somebody is having bhakti in the heart, through that influence bhakti comes to us also. So bhakti kahan se aayi? Bhakti se bhakti aayi. Aur bhakti kaisi honi chahiye? भागवत के अनुसार भक्ति होनी चाहिए जिसमें कोई हेतु नहीं है, जिसके ऊपर कुछ हमारा मोटिव नहीं है कुछ और प्राप्त करने का, उसका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है भगवान की सेवा करने का, भगवान को प्रसन्न करने का। सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सो आंसर टू द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली कंबाइंड, दिस इज गिविंग द आंसर टू द फर्स्ट टू क्वेश्चंस। तो जीव का उद्धार कैसे होगा? सबसे उत्तम क्या है जीव के लिए? भगवान की भक्ति करना। और सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो दूसरा प्रश्न था, सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो सारे शास्त्रों का सार यही है कि जीव को भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और भक्ति कैसे की जा सकती है? अभी भक्ति अगर हमें करनी है तो भक्ति कैसे की जा सकती है? Coming to Bhagavad class, coming to satsang program, that is also part of bhakti. That is association. And when we come to the satsang program, अगर सत्संग में आते हैं तो सत्संग में आके क्या होता है? भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, श्रवण, श्रवण एंड कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। और अगर आप श्रवण और कीर्तन करेंगे और घर पे जाके क्या होगा? स्मरणम, तो उसको याद करेंगे। अगर कोई बोले नहीं तो मैं तो घर पे बैठ के याद कर लूंगा, मुझे कीर्तन जाके सुनने की कुछ जरूरत नहीं है, कुछ कथा सुनने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे याद आएगा दिमाग में भगवान की कथा? तो जब प्रहलाद महाराज ने भक्ति के 9 लक्षण बताए, 9 लिंब बताए भक्ति के, उन्होंने बोला श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उन्होंने ये नहीं बोला स्मरणम श्रवणम कीर्तनम। तो पहले एक श्रवण और कीर्तन होगा, फिर स्मरणम होगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक भगवान का गुणगान करेंगे नहीं, तो भगवान का स्मरण भी नहीं आएगा। तो भगवान की कथा सुनना, भगवान का गुणगान करना, भगवान की का नाम जपना, ये भक्ति का पार्ट है। और भगवान को याद करना, उसके बाद भगवान की सेवा करना, प्रैक्टिकल सर्विस। और ये कभी कभी होना चाहिए कि रोज होना चाहिए? तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम कभी कभी होना चाहिए कि रोज होना चाहिए? रोज होना चाहिए, ऑल द टाइम, 24/7। बट इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि 24/7 माला लेके बैठे कुछ काम नहीं कर रहे हैं। सो यू डू दैट डेडिकेटेड टाइम ऑल्सो। अगर हम बैठ के आराम से भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो बाकी सब समय भी भगवान का चिंतन रहेगा। तो जो अल्टीमेट पर्पज है वो है भक्ति। और भक्ति करने का फल क्या है? ज्ञान और वैराग्य खुद ब खुद आ जाते हैं। अगर कोई भक्ति करता है तो ज्ञान और वैराग्य हृदय में खुद प्रकट होते हैं। उसके लिए अलग से व्यक्ति को परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। पर अगर कोई ज्ञान मार्ग में है तो उसको वैराग्य लेके आने के लिए अलग से परिश्रम करना पड़ेगा। अगर कोई ज्ञान मार्ग में है उसको भक्ति करने के लिए अलग से परिश्रम करना पड़ेगा। पर अगर कोई भक्ति कर रहा है तो ज्ञान और वैराग्य खुद आ जाएंगे। तो जब हमने भागवत का महात्म्य सुना, उसमें सुना भक्ति देवी ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के पुत्र हैं। तो जहां पर भक्ति देवी जाती है ज्ञान और वैराग्य खुद पहुंच जाते हैं। तो अगर हृदय में भक्ति प्रकट होती है तो ज्ञान और वैराग्य खुद ब खुद हृदय में प्रकट होते हैं। एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास आया, बड़ा ज्ञानी। तो महात्मा जी की थोड़ी प्रशंसा कर रहा था अपनी तरफ से, महात्मा जी आप तो कितने सन्यासी हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं जीवन में, सब कुछ आपने भगवान को अर्पण कर दिया, अब तो बहुत त्यागी हैं। महात्मा जी ने बोला नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूं, आप मुझसे भी ज्यादा त्यागी हैं, आप तो मेरे से ज्यादा बड़े त्यागी हैं। तो वो महात्मा जी को बोला नहीं नहीं आप बहुत बड़े त्यागी हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, सब कुछ छोड़ दिया आपने। तो वो उस व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं नहीं तुम मुझसे भी ज्यादा त्यागी हो। तो थोड़ा परेशान हो गया, बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं आपको थोड़ी आपकी प्रशंसा कर रहा हूं, आप उल्टा मुझे बोल रहे हो। तो महात्मा ने बोला मैंने तो सिर्फ संसार की थोड़े बहुत भोग त्यागे हैं जो कि तुच्छ हैं, तुमने तो भगवान का ही त्याग कर रखा है, तो तुम ज्यादा बड़े त्यागी हुए कि नहीं हुए, क्योंकि भगवान की तो कोई कीमत नहीं लगा सकते, संसार के भोग तुच्छ हैं, अगर कोई संसार के भोग त्यागे तो वो कितना बड़ा त्यागी है, पर अगर किसी ने भगवान को ही त्याग रखा है वो तो ज्यादा बड़ा त्यागी हुआ। तो अगर किसी के अंदर बहुत सारा ज्ञान है, वैराग्य जरूरी नहीं है कि आएगा, जरूरी नहीं है कि भक्ति आएगी उसको, अल्टीमेट अगर लाइफ का गोल प्राप्त करना है तो भक्ति स्वीकार करनी पड़ेगी, तब जाके उसको जीवन का जो अल्टीमेट पर्पज अल्टीमेट उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। और उसके बाद सुत गोस्वामी आगे बताते हैं कि भक्ति, लोग अपना अलग अलग व्यवसाय में लगे हुए हैं, पर जब तक व्यवसाय अपना करते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हुए संसार में अगर किसी के हृदय में भक्ति उत्पन्न ना हो तो वो सब काम व्यर्थ हैं। धर्म स्वनिष्ठ पुंसा विश्व कसेन कथा इसुय नोत्पद्यात यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। द ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज अ मैन परफॉर्म अकॉर्डिंग टू हिज ऑन पोजिशन आर ओनली सो मच यूजलेस लेबर इफ दे डू नॉट प्रोवोक अट्रैक्शन फॉर द मैसेज ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो हम जो भी अपना व्यवसाय कर रहे हैं, जो भी अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं संसार में, उसको करते करते अगर भगवान की कथा के प्रति आकर्षण पैदा ना हो, अगर भगवान की सेवा करने के प्रति रुचि पैदा ना हो, तो जितना भी हमारा सब काम है, जितना भी हमारा ड्यूटीज हम कर रहे हैं, भागवत क्या बोलता है, श्रम एव ही केवलम, वो सब एक व्यर्थ का श्रम है, यूजलेस लेबर। जैसे एक गधा है, गधे को पूरा दिन में क्या चाहिए, अल्टीमेटली खाने के लिए थोड़ा सा घास, तो उसको वो घास कहीं भी मिल जाएगा, राइट? पर गधा क्या करेगा, वो अपने पीठ के ऊपर बहुत सारा बोझा लाद के पूरा दिन बहुत परिश्रम करेगा, और जो दिन के अंत में उसका जो मालिक है गधे के सामने अल्टीमेटली क्या डालेगा, थोड़ा सा सूखा घास, और वो घास हर जगह उपलब्ध है वैसे ही। तो गधे का जो पूरा परिश्रम है वो क्या है, एक तरह से व्यर्थ है, क्योंकि वो उसको कहीं भी मिल सकता है। तो ऐसे ही हमारा जो रिस्पॉन्सिबल, हमारी जितनी भी सारी जरूरतें हैं वो अल्टीमेटली भगवान पूर्ण कर रहे हैं, भगवान ने सारा अरेंजमेंट किया है हमारी जरूरतों को पूरा करने का। पर अब हम अपने काम करते हुए, हम अपना व्यवसाय करते हुए बेस्ड ऑन दिस वर्णाश्रम सिस्टम, तो भगवान ने ये वर्णाश्रम सिस्टम का निर्माण किया, अरेंजमेंट किया उन्होंने ये वर्णाश्रम सिस्टम का, ताकि हम अपनी नेचर के हिसाब से उस कार्य में एंगेज हो सकें, उस कार्य में लग सकें। तो वर्ण क्या हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम क्या है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो जैसी जिसकी नेचर है, जैसी जिसकी प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से वो अपना ऑक्यूपेशन चूज करता है। पर आज के युग में, आज के समय में, क्या हम लोग अपनी नेचर अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से अपना काम चुनते हैं? So what is the driving factor for choosing our occupation?
पैसा.
कौन से व्यवसाय में पैसा ज्यादा है? डॉक्टर बनूंगा तो $5,00,000 मिलेगा साल का, तो डॉक्टर बनना है. इंजीनियर बनूंगा, साल का $1,00,000 पक्का, इंजीनियर बनना है. अगर गाय पालन करूंगा, खेती बाड़ी करूंगा तो 30,000-40,000 मिलेगा. कौन करेगा इतनी सरदर्दी? तो आजकल कोई भी अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से कार्य नहीं करता. हम कार्य करने का जो मेन फैक्टर मोटिवेशन है अपना व्यवसाय चुनने का, वो है पैसा, काम. तो भागवत क्या बता रहा है? द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी शुड नॉट बी डन फॉर गेनिंग मनी, ओनली फॉर अर्निंग मनी. एंड द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी शुड नॉट बी ओनली फॉर सेंस एंजॉयमेंट. धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थोपकल्पते, नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय हि स्मृतः. वन शुड नॉट एंगेज इन वन्स ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जस्ट टू अर्न मनी, एंड द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी शुड नॉट बी फॉर सेंस एंजॉयमेंट, बट वन शुड ट्राई टू सीक आउट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, एंड दैट इज जीवस्य तत्व जिज्ञासा, टू एंडेवर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन. तो हम जो अपने व्यवसाय में लगते हैं, अगर काम कर रहे हैं और काम करते करते भगवान के प्रति रुचि पैदा नहीं हो रही, तो वो सब काम क्या है? व्यर्थ, वेस्ट ऑफ टाइम. इट्स लाइक द हार्ड लेबर ऑफ अ डोंकी. और कभी कभी हम किसी को बोलते हैं, अच्छा आप सत्संग में आओ, मंदिर में आओ, कथा में आओ, तो जनरली क्या सुनने को मिलता है? मैं बहुत बिजी हूं, आई एम टू बिजी, आई हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बच्चों की एक्टिविटीज हैं, घर की देखभाल करनी है, मेरे काम पे बहुत प्रेशर है. तो ऑल दोज एक्सक्यूजेस कम, सो वी हैव बिकम सो मच ऑक्यूपाइड इन दोज थिंग्स. उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं कि भगवान के लिए कोई समय ही नहीं है. पर होना चाहिए उसके उल्टा. जब तक भगवान के लिए समय नहीं है तो वो सारी चीजें व्यर्थ हैं. तो कभी कभी माता जी के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली फॉर वर्किंग माता जी. वी चूज द ऑक्यूपेशन बाय आवर ओन डिजायर, क्योंकि हमारी इच्छा है कि मैं काम करूं, तो इसलिए जॉब में जाते हैं. और जॉब में जाके क्या होता है? फिर लाइफ बिकम्स टू बिजी. बट इज इट समबडी फोर्स्ड अस टू डू, और वी चूज इट फॉर अवरसेल्फ? वी चूज, बट समटाइम समबडी विल से वी हैव द नीड, सो वी हैव टू डू. इफ वी डोंट डू, हाउ विल बी मैनेज एवरीथिंग? बट डू वी रियली हैव, क्या हमें सचमुच में वो जरूरत है जिसकी वजह से हम काम पे जा रहे हैं, या हमने अपनी जरूरतें खुद पैदा कर रखी हैं? तो होता क्या कि हम अपनी जरूरतें कई बार इतनी बढ़ा लेते हैं कि उन जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर बहुत कुछ करना पड़ता है. जरूरत नहीं है कि 4,000 square feet का घर हो. अगर 4,000 square feet का घर लिया तो फिर उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, फिर बाहर का भी बहुत सारा काम होगा, लॉन मोइंग एंड ऑल दैट. सो पर उसका क्या रैली में उसका क्या जरूरत था? तो क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर सेल्फ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तो हमने अपने ऊपर खुद ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा लेते हैं कि हम उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं फिर कि कुछ और सोचने का समय नहीं मिलता. तो भगवान के लिए समय निकालें, भगवान की कथा सुनने के लिए समय निकालें, भगवान की सेवा करने के लिए समय निकालें. दैट इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ भागवत और अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर, एंड दैट इज द अल्टीमेट ड्यूटी ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी. Anybody has any question or comment so far?
Can you tell the number of it?
So the first one I recited was Soe Punto Paro Dharmo, that is 1.2.6. So Canto 1, Chapter 2, Text 6. And the second one which I read was Dharma Swanishta Pumsa Vishwakasena Kathasuya Nathpadyat Yadiratim Shrama Evahi Kevalam. So that is Canto 1, Chapter 2, Text 8. So जो हमारा व्यवसाय है उसका पर्पस काम पूर्ति नहीं होना चाहिए, मतलब उसका पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, और पैसा कमाने का अल्टीमेट पर्पस सेंस एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं हिंदू धर्म में ये चार फल हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सुनते हैं ये चार। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, कि धर्म करो, धर्म करने से क्या मिलेगा, काम प्राप्त होगा, काम से क्या होगा, सो धर्म अर्थ, सो धर्म से अर्थ मिलेगा, अर्थ से काम की प्राप्ति होगी, और काम उसके बाद फिर मोक्ष। तो लोग सिर्फ धर्म को एक जरिया बना लेते हैं, एक रिसोर्स बना लेते हैं अपने अर्थ के लिए, और प्रेयर्स बिकम मोटिवेटेड, प्लीज गिव मी दिस, प्लीज गिव मी दिस, प्लीज गिव मी दिस। सो पीपल गो टू टेम्पल, भगवान के मंदिर में जाते हैं मांगने के लिए, और भगवान को हम समझ लेते हैं जैसे भगवान होटल में खड़ा हुआ है, एक वेटर है, होटल में आप जाते हो, वेटर खड़ा हुआ है, वेटर आता है आपके पास, सर क्या चाहिए, अच्छा एक समोसा ले आओ, एक डोसा ले आओ, एक पिज्जा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, जैसे भगवान उस वेटर को हम अपना ऑर्डर पकड़ा देते हैं, वैसे ही कुछ ज्यादातर समय हम मंदिर में जाके भगवान को वहां पर खड़ा हुआ वेटर समझ लेते हैं, उसके सामने भगवान के हाथ में लिस्ट पकड़ा देते हैं, अच्छा जल्दी जल्दी एक फटाफट जॉब लगवा दो, बच्चे की शादी करवा दो, एक बड़ा सा घर दिलवा दो, एक अच्छी सी गाड़ी दिलवा दो, लाइफ में सेट करवा दो। सो इट इज लाइक जस्ट गिविंग अवर विश लिस्ट टू गॉड। तो भगवान को हम अपना ऑर्डर सप्लायर समझ लेते हैं, कि भगवान का काम है हमारे ऑर्डर की पूर्ति करना, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करना। पर होना क्या चाहिए, कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, ना कि भगवान को अपनी सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के सामने अपनी जाके इच्छाएं बोल रहे तो क्या हो रहा है, भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। यस वी कैन आस्क अवर नेसेसिटीज, वी कैन आस्क फॉर अवर नेसेसिटीज फ्रॉम लॉर्ड। तो नेक्स्ट वर्स में आता है वन शुड डिजायर ओनली सेल्फ प्रिजर्वेशन, वन शुड नॉट डिजायर फॉर काम, वन शुड नॉट डिजायर फॉर सेंस एंजॉयमेंट, बट वन शुड डिजायर फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। भगवान से कुछ मांगना है तो क्या मांगना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य मांगना चाहिए। और अच्छा स्वास्थ्य क्यों मांगना चाहिए, ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, ना कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य दो ताकि मैं और एंजॉय कर सकूं। बहुत सारे लोग योगा करते हैं, द अल्टीमेट पर्पज ऑफ योगा, योगा करने का पर्पज क्या है, योगा अल्टीमेट, इन अल्टीमेट सेंस व्हाट इज योगा, टू कनेक्ट विद लॉर्ड, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड युज, टू कनेक्ट। और जो हम अष्टांग योगा के नाम पे करते हैं वो क्या है, सिर्फ एक तरह का शारीरिक परिश्रम, शारीरिक व्यायाम, एक्सरसाइज, किसके लिए, ताकि हम थोड़ा स्वस्थ रह सके, थोड़ा माइंड पीसफुल हो सके, थोड़ा शरीर स्वस्थ रह सके। और क्यों रह सके, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक भोग कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा समय तक एंजॉय कर सकूं। तो योगा मींस टू कनेक्ट विद लॉर्ड। तो व्यवसाय का मतलब नहीं होना चाहिए कि सिर्फ परिश्रम करते रहो पैसा कमाने के लिए। लोग पैसा कमाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं, पैसा कमाने का जो अल्टीमेट पर्पस है वो भी भूल जाते हैं। पैसा कमाने का पर्पस क्या है उनके लिए, चलो अगर पैसा भी कमा रहे हैं तो अपने एंजॉयमेंट के लिए कमा रहे हैं, ताकि अच्छे से खा पी सके। पर जो काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, खुद का खाने पीने का ही कोई होश नहीं है। कितने लोग हैं जो काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, और जिनके पास बहुत अच्छा समय है कि वो अच्छे से घर पे अच्छा खाना बना के खाते हो, एवरीडे फ्रेश मील ऑल थ्री टाइम्स। So, आजकल जितने भी ये होटल हैं, जितने भी सब रेस्टोरेंट्स हैं, उनका सिस्टम क्या हो गया है, टू गो कैरी आउट। ना तो किसी के पास ब्रेकफास्ट का टाइम है, ना किसी के पास लंच का टाइम है, और डिनर में आएंगे तो बोलेंगे बहुत थके हुए हैं, कुछ ना कुछ क्विक फिक कुछ बनाओ, क्विक मेल और हो गया। तो जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए ही समय नहीं है। इतना बड़ा घर बनाएंगे पर उस घर को एंजॉय करने का समय है? समर में बाहर अच्छे से लॉन में बैठ सके, कुछ बाहर अच्छा से एंजॉय कर सके, समय नहीं है। ब्रेकफास्ट सिस्टम इज सम मैकडॉनल्ड और सम टिम हॉर्टन कैरी आउट टू गो राइट, लेट मी ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी सम डोनट और समथिंग, दैट्स माय ब्रेकफास्ट। दोपहर में मीटिंग्स में इतना व्यस्त है लंच करने का समय नहीं है। और फिर शाम को थके हुए घर पे आओ, हस्बैंड वाइफ में आपस में व्हाई शुड आई डू, यू शुड डू इट, मैं क्यों करूं सारा काम, तुम करो। सो ऑल दिस व्हेन वी आर वी कीप आवर सेल्फ इन द सेंटर ऑल दिस प्रॉब्लम्स कम, बट व्हेन यू कीप कृष्णा इन द सेंटर एंड वी एंगेज अवर एक्टिविटीज, वी मोल्ड अवर एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली, देन ओनली कैन ब्रिंग पीस इन लाइफ। जब तक भगवान को अपनी लाइफ में नहीं जोड़ेंगे तब तक सब कुछ व्यर्थ है, श्रम है वही केवलम। एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और अपनी मृत्यु के समय पे उन्होंने अपना विल छोड़ के गए कि मेरे जो प्रॉपर्टी है ऐसे ऐसे उसका विभाजन करना चाहिए। तो जब उनकी मृत्यु के बाद उनका सब अंत्येष्टि सब काम हो गया तो सब लोग इकट्ठे हुए कि उनका जो विल छोड़ के गए हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, उनको डिवाइड किया जाए। तो जब विल पड़ा तो उसमें क्या था, विल में अपनी प्रॉपर्टी में क्या छोड़ के गए, वो 19 ऊंट 19 कैमल, दैट इज द प्रॉपर्टी। और उसमें लिखा कि मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका हाफ पोर्शन मेरी पत्नी को दिया जाए, उसका जो 1/4 है मेरे बेटे को दिया जाए, और जो उसका 1/5 है मेरे नौकर को दिया जाए। तो इस तरह से जो मेरी संपत्ति है उसका विभाग किया जाए इन सब में। तो प्रॉपर्टी में क्या छोड़ के गए थे, 19 ऊंट 19 कैमल। तो 19 जो 19 कैमल है उसको विभाग करना है हाफ। तो 19 का आधा कैसे करेंगे, 19 का आधा कितना हुआ, 9.5। अभी एक ऊंट को आधा में कैसे काटे और दो में कैसे दें, और वैसे 19 का 1/4 कितना हुआ। तो सब लोग परेशान हो रहे थे अभी सब में, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है अपने विल में कैसे डिवाइड किया जाए। तो जब सब एग्जॉस्ट हो गए, कोई सलूशन नहीं है, तो उस गांव में एक साधु रहते थे जो जिसकी मृत्यु हुई उनके काफी जानकार थे, काफी परिचित थे उनके। तो उन्होंने उस साधु को बुलाया, आप आके थोड़ा निवारण कीजिए इसका, इस समस्या का। तो वो साधु आए, उनके पास भी एक ऊंट था, अपने ऊंट पे बैठ के आए। तो उनको प्रॉब्लम बताया कि ऐसे 19 ऊंट हैं, उनका विभाग करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, आप थोड़ी सॉल्यूशन बताइए, थोड़ा सहायता कीजिए। तो उन्होंने बोला ऐसा करो मेरा एक ऊंट है उसको भी ले लो, तो मेरा ऊंट एक ले लो और जैसे उस पर लिखा गया है वैसे विभाग कर दो। तो 19 प्लस 1 मिला के कितने हुए, 20। तो 20 का आधा कितना हुआ, 10। ओके, 10 ऊंट उनकी बीवी को दिए जाएं। अभी 20 का 1/4 कितना हुआ, 5। 5 ऊंट उनके बेटे को दिए जाएं। 20 का 1/5 कितना हुआ, 4। 4 ऊंट उनके नौकर को दिए जाएं। तो विभाग हो गया 10 प्लस 5 प्लस 4 कितने हो गए, 19। तो जो एक बचा, अच्छा ये अभी मेरा एक वापस मुझे दे दो। पर ये कथा का सार क्या है, हमारे पास जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, बहुत प्रॉपर्टी होगी, बहुत बैंक बैलेंस होगा, बच्चे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, पर जब तक वो एक भगवान को आप अपने जीवन में ऐड नहीं करते तो वो सब जीरो है। ऑल अवर एक्यूमुलेशन, ऑल अवर वेल्थ, ऑल अवर प्रॉपर्टी इज जीरो। और जब तक उस एक को जीरो के सामने नहीं लगाएंगे तो उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए भगवान को जीवन में ऐड करना वो जीवन का उद्देश्य है, वो जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य है। और जब तक भगवान को जीवन में ऐड नहीं करते, जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगते, जब तक भगवान के शरणागत नहीं होते, तब तक जीव का उद्धार नहीं हो सकता। तो हमारा काम जब तक हमें भगवान से दूर रख रहा है वो हमारे उद्धार के मार्ग में एक बाधा है। सो पर्पज होना चाहिए काम करने का, ताकि मैं अपना निर्वाह कर सकूं और साथ साथ भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान की भक्ति कर सकूं, एटलीस्ट मेरे पास इतना समय हो. नॉट एंडेवरिंग हार्ड एंड हार्ड जस्ट टू अक्यूमुलेट मनी. जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना भी एक कला है. प्रार्थना करने का सिर्फ ये पर्पज नहीं होना चाहिए भगवान से मांगना. जब भी आप कभी भगवान से प्रार्थना करोगे अगली बार, तो अपने आप को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने अंदर झांक के देखना कि प्रार्थना में हम क्या कर रहे हैं. आर वी ऑलवेज आस्किंग फॉर समथिंग फ्रॉम गॉड? प्रार्थना करते हैं तो पहला प्रार्थना का पर्पज क्या होना चाहिए? भगवान को ग्लोरीफाई करना. डू वी डू दैट? व्हेनेवर यू से एनी प्रेयर्स टू कृष्णा, डू वी से कृष्णा यू आर सो ग्रेट, यू आर सो पावरफुल, यू आर सो वंडरफुल? हाउ मेनी टाइम वी ग्लोरीफाई कृष्णा इन अवर प्रेयर्स? और एक्चुअली अगर भागवत में भी भगवान की ग्लोरिफिकेशन पढ़ते हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं, तो क्या होता है? नींद आने लगती है, बोरियत होने लगती है. कुछ थोड़ा एक्साइटिंग बताओ. ये भगवान की प्रेयर्स, उद्धव जी ने ऐसे प्रार्थना की भगवान को, अक्रूर जी ने ऐसे ऐसे भगवान को प्रार्थना की, कुंती महारानी ने ऐसे भगवान को प्रार्थना की. जब ये सुनते हैं तो वो सेक्शंस बहुत बोरिंग लगते हैं. कुछ तड़क बड़क वाला बताओ, कुछ पास टाइम, कुछ लीला. तो प्रार्थना, सबसे पहला जो प्रार्थना का पार्ट होना चाहिए, भगवान को ग्लोरीफाई करना. और फिर दूसरा पार्ट, जो भगवान को प्रार्थना करते हैं तो भगवान का शुक्रिया करना, बींग थैंकफुल फॉर वट एवर वी हैव गॉट. यू हैव गॉट हेल्दी लाइफ, बी थैंकफुल फॉर दैट. यू हैव गॉट अ नाइस हाउस टू स्टे, बी थैंकफुल फॉर दैट. यू हैव गॉट नाइस फैमिली, बी थैंकफुल फॉर दैट. बट हम क्या करते हैं, हमेशा गलतियां निकालते रहते हैं. ऐसा ही क्यों मेरे साथ, ऐसा ही क्यों? ये पत्नी मुझे ही मिलनी थी, ये बच्चा मुझे ही मिलना था. तो उसमें हम क्या करते हैं, गलती निकालते हैं. रेदर देन बींग थैंकफुल, बींग एट ग्रेटफुल फॉर वट वी हैव गॉट, वी आर ऑलवेज आस्किंग फॉर समथिंग मोर एंड मोर एंड मोर. तो प्रार्थना करना, पहला भगवान को ग्लोरीफाई करना, दूसरा प्रार्थना करने का उद्देश्य होना चाहिए भगवान को शुक्रिया करना जो हमें मिला है भगवान से, और तीसरा अगर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं तो कुछ मांगना भगवान से. और मांगना भी क्या, नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो. भगवान से मांगना कि मुझे इंटेलिजेंस दो, मुझे शक्ति दो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मुझे समय दो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं पर मुझे समय दो ताकि मैं अपनी सारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते करते आपकी भक्ति भी कर सकूं. मुझे अच्छा हेल्थ दो, अच्छी सेहत दो ताकि मैं आपकी सेवा में लग सकूं. भगवान की सेवा करने के लिए भी हेल्थ चाहिए, राइट? इफ समबडी कैनॉट इवन वॉक और मूव फ्रॉम वन प्लेस, हाउ विल सर्व कृष्णा? यस, यू कैन स्टिल कीप सिटिंग एट वन प्लेस एंड चैंट द होली नेम, दैट इज ऑल्सो वन सर्विस. बट यू नीड टाइम. तो भगवान से वो मांगना जिससे हम भगवान की सेवा में लग सके. और फिर उसके बाद अगर अपनी जरूरतों के लिए कुछ मांगना है तो वो भी मांग सकते हैं. ऐसा नहीं है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं है, कुछ नहीं मांग सकते. ही इज लाइक ए लविंग फादर, एंड अ लविंग फादर ही ऑलरेडी नो वट इज चाइल्ड नीड, राइट? पिता को पता है कि मेरे पुत्र को क्या चाहिए, और अगर पुत्र जाके बोले कि आप मुझे ये दो, एंड इफ फादर थिंक्स यस यू नीड दिस थिंग एंड दिस इज गुड फॉर यू, ही विल गिव इट. और पर हमारे साथ क्या होता है, हम भगवान को अपनी बड़ी बड़ी लिस्ट पकड़ा देते हैं और फिर दो महीने कुछ नहीं होता तो भगवान कहते, अरे यू कैन नॉट डू इवन दिस फॉर मी, व्हाट काइंड ऑफ गॉड आर यू, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते आप. सो वी शुड सी व्हाट वी आर प्रेइंग फॉर, आर्ट ऑफ प्रेयर. वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रेयर. So we'll stop here today. And if anybody has any question or any comment or any point of discussion. So today we discuss few shlokas answering the first two questions. जीव के लिए सबसे उत्तम क्या है और सारे शास्त्रों का सार क्या है. बोथ दीज आंसर दिस पार्ट आंसर बोथ दीज क्वेश्चन. उत्तम है भगवान की भक्ति में लगना, और सारे शास्त्रों का सार यही है कि भगवान की भक्ति की जाए, अहेतुकी अप्रतिहता. और अगर भगवान की भक्ति के प्रति हमारी रुचि पैदा नहीं हो रही है अपना काम करते करते, तो हमारा जीवन व्यर्थ है. Purpose of scripture is to know Krishna, not just know Krishna, but to engage in service. So it's a sambandha gyan, abhideya gyan and prayojan. It's not just sambandha. Just knowing my relationship with somebody is not enough. I need to act in that relationship. If a wife knows he is my husband, so she just stays through that level of understanding, or he is my husband, but doesn't come to the level of acting in that relationship, will that relationship survive? So just to know the relationship is not enough. We have to act in that relationship. So just knowing Krishna is my ultimate father, that is good, but we have to engage based on that relationship.
Follow his instructions.
Right. So this second and third chapter of Srimad Bhagavatam, first canto, answer briefly all six questions. And the flow of the second chapter is, first it describes the ultimate goal is bhakti. And then moving forward it speaks more how to engage in bhakti and the progressive stages of bhakti. What are the progressive stages of bhakti? From Shraddha to Sadhu Sangha, then Ruchi develops, all that. Anartha Nivritti happens, Ruchi develops. So it describes those stages. Aur kiski bhakti karni chahiye, kaisi bhakti honi chahiye. So in the next session we'll discuss further more. Continuing from this onwards in the next session of Bhagavatam. Grantrashma Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय.